ॐ नमः
ॐ नमः
ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन् योगिना कामगं सुखं चैव ॐकारा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। महानुभाव आज उत्तम सत्य धर्म है, अहिंसा और सत्य एक ही सिक्के की दो पहलू है, समझिए आप लोग। सत्य अहिंसा को छोड़ के नहीं और अहिंसा सत्य को छोड़ के नहीं। अहिंसा निषेधात्मक है, सत्य विधियात्मक है। अहिंसा निषेध करता है संवर्त, बोले मत करो, रोक देता है, और जो सत्य है वो विधियात्मक है। केवल प्रिय नहीं है, वह सत्य हो, प्रिय भी हो और हितकारक भी। इसीलिए इसकी परिभाषाएं अनेक प्रकार से करते हैं, भाषा समिति, सत्य वचन, वचन मुक्ति और सत्य महावर्त इत्यादि अनेक रूपों से इस सत्य को उन्होंने अभिव्यक्त करने के लिए निर्वचन कर दिया। परंतु सत्य न लिखा जा सकता है न बोला जा सकता है जबान से। जो बोला जाएगा वो पूर्ण सत्य कभी नहीं होगा। इसलिए आचार्यों ने मुनियों के लिए चार में से दो बोलने के लिए कहा और दो बोलने के लिए मना कर दिया। सत्य महाव्रत सत्य बोलने के लिए कहा, असत्य और उभय को मना कर दिया और अनुभय को फिर मंजूर। सत्य और अनुभय बोल सकते हैं, उभय और असत्य दोनों नहीं बोल सकते। सत्य आत्म साक्षात्कार की चीज है, आत्मानुभूति की चीज है। सत्य आत्मा की ही एक पहलू है, इसलिए सत्य कभी जबान से बोला नहीं जाएगा। जो बोला जाएगा उसमें अधूरापन है, एक आंशिक सत्य बोला जा सकता है। पूर्ण सत्य आत्मा का अनुभव ही, पूर्ण सत्य जिसको कहते हैं। और इसके घटनाएं शास्त्रों में अनेक वचन मिलते हैं, अजेरियष्टव्यम, इस एक ही असत्य से और क्या क्या नहीं हुआ वसु राजा। सभी अपने पुराण ग्रंथों में बहुत बड़ी उसकी चर्चा है। तो गृहस्थ स्थूल सत्य के व्रती बन सकता है और ये सत्य एक विश्वास प्राप्ति के लिए भी कारण है। जो सत्य बोलता है अपना ही बेटा तो पिता के उस पर विश्वास होता है, और पिता सत्य बोलता है तो पुत्र का अपना विश्वास होता है। ये लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। जो सेवा करने वाला नौकर इत्यादि होता है वो यदि सत्य बोलता है तो उस पर विश्वास किया जाता है। हजारों मील दूर रहते हुए भी शासक शासन करते हैं तो उस सत्य के ऊपर विश्वास करके करते हैं। और सत्यनिष्ठों से ही दुनिया चलती आ रही है और चलती रहेगी। इसलिए मनुष्य को इस सत्य से परे इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए पहले उन्होंने कपट को पहले रखा, लोभ को भी छुड़वा दिया, क्योंकि मनुष्य जो झूठ बोलता है लोभ के कारण भी झूठ बोलता है, मायाचार से भी झूठ बोलता है, क्रोध के कारण भी झूठ बोलता है और मान कषाय के कारण भी झूठ बोलता है। इन चारों को पहले उन्होंने सफाई करवा दी, क्रोध मान माया लोभ ये हटा देने के बाद बोले अब सत्य का नंबर, इससे पहले सत्य का नंबर नहीं। जो कठिन है उसको अंत में डाला शास्त्रों में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। चारित्र ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन से साध्य ज्ञान प्रयत्न साध्य, पर चारित्र जो है वो केवल प्रयत्न साध्य नहीं है उसके कर्मों का क्षय। क्योंकि ज्ञान जो है वह प्रत्येक निबोधिकाय से लेकर ऊपर तक अपना क्षयोक्षम उसका है, कुछ नहीं कुछ है, पर चारित्र ऐसे नहीं है। चारित्र की तरफ मनुष्य झुकता नहीं, इसीलिए उसका संयम भी आखिर और आगे रख दिया। सत्य घोष की कथा उत्तर पुराण में आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूं। मनुष्य को सत्यनिष्ठता को छोड़ने के बाद धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म की जड़ें सत्य पर आधारित है और आप सब लोग अनुभव करते हैं कि सत्य कितना महत्वपूर्ण है। सुमेरु पर्वत जैसा वो उस पर जुड़ रहना आसान नहीं। मनुष्य अपना एक पैसे का लाभ हो रहा है और दूसरे का लाख नुकसान हो रहा है तो भी झूठ बोलने को तैयार बैठा हुआ है किसी ने किसी रूप में। और आज इस वर्तमान युग के अंदर पाश्चात्य पद्धति को लेकर जो कोर्ट चल रहे हैं वहां तो गवाहियों की भंडार लगी हुई, चाहे जिसको लालच दे के कोई भी गवाह। और ये कलयुग का महात्म्य है। जवाहरलाल जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने कभी झूठ बोला हुआ मैंने नहीं सुना, उन्होंने कहा था, पेपर में प्रकाशित हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने कभी जीवन में झूठ बोला हुआ मैंने नहीं सुना। अर्थात कि राजनीति में भी सत्य का प्रयोग किया जा सकता है, सत्य जीवन में उतारा जा सकता है। जो ये समझते हैं झूठ छल कपटचार मायाचार करके ही कोई अपने राजनीति में प्रवेश कर सकता है, ये भी एक भूल है। मान भाव सत्य का जहां अंश होता है वहां अंश केवल वहां भी जीत होती है। जब जज को यह पता चलता है कि वकील हमेशा झूठ बोलता है तो उसके सारे जजमेंट खराब कर देता है। बोलता है कि हमेशा ही झूठ केस ले आता है, इसलिए उसके जो केसेस जो है वो जजमेंट देते समय बोलता है कि इसको ये कर दो। वो जब सोचता है कि नहीं इसमें सत्य अंश है तब उसके पक्ष भी थोड़ा बहुत ले लेता है। तो समस्त लोक धर्म के अंदर और आत्मधर्म के अंदर सत्य, और सत्य इसको आप ये मत समझिए इतना आसान है। और सत्य एक प्राप्त करने के बाद तीन लोक में और कोई प्राप्ति की जरूरत ही नहीं बताया, तो बड़ी मिलावट असत्य से शुरू हो जाती है। चाहे खोट किसी भी में मिला दो, बातों में खोट मिला दो, शास्त्रों में खोट मिला दो, खाने की चीजों में खोट मिला दो, औषधों में खोट मिला दो, दुनिया भर ये सब काहे के लिए? असत्य तो है, सत्य का ऊपर लेबल लगा के और असत्य तो वे बेचना है। तो ये साक्षात जो वितराग पुरुष है उसकी परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां हैं ये शास्त्रमानिक रूपों से समझाया है, पर शास्त्रों में है, शास्त्रों में रहने वाले सिद्धांत से कुछ नहीं है, वो जीवन में कुछ कितने उतरे इस पर निर्भर है। बोलते हैं सत्य घोष अपने जनिवा को एक चक्कू टांग रखा था। लोगों ने पूछा क्यों, बोले जिस समय मेरा ये जवान झूठ बोलेगा उसी समय जवान काट फेंक दो। सत्य दो ही के पास, एक प्रजा पालन करने वाला राजा और एक साधु, मूल आधार शिला इस लोक में लोक धर्म और आत्मधर्म, ये दो के पास सत्य होना चाहिए। ये जो दुकानदार है ये बोर्ड लगाया हुआ है मैं कमाने के लिए खड़ा हूं करके, इसने बोर्ड लगाया रखा तो थोड़ा सा वो उसको इजाजत है कि लाभ कमाने के पीछे, पर राजा ने बोर्ड नहीं लगाया, उसने शपथ जो ले लिया कि मैं कमाने के लिए मंत्री या मैं मेंबर या मैं ये ऑफिसर नहीं बना हूं, मैं कमाने के लिए नहीं, मेरा जो बोर्ड है वो न्याय के लिए सच्चाई के। ये जो वो बोर्ड लगाने वाले भी चुन के जाने वाले पार्लियामेंट के मेंबर लोग चुनाव के लिए लोगों से पिछले दरवाजे से पैसा ले लिए और चुन के आ जाए तो सच्चाई से कैसे माना जाए, कैसे माना जाए? तो इसलिए जब तक इस देश के अंदर हमारे न्याय पद्धति सिद्धांत को चलानी है सच्चाई को, तो पहले इस देश के अंदर इस लोकतंत्र को सफल करने के लिए सच्चाई को सफल करने के लिए एक पैसा भी व्यापारी से नहीं लिया जा सकता है, न लिया जाना चाहिए। मैं दिल्ली में था 1965 में, एक मद्रास के बहुत बड़े ऑफिसर को यह नियुक्त कर दिया कि कोई मिलावट नहीं कर दी खाने पीने की चीजों में, वो अपने दल के साथ डॉक्टर मजिस्ट्रेट सब लेके चलता, जट के एग्जाम में झपटा के और वहां जाके अंदर उन्होंने जांच पड़ताल की, उसमें मिलावट असली ही कि भैया और क्या क्या डाला था, उन्होंने सील कर दिया और उसके वो जो क्या दिया जाता है दुकानदारों को लाइसेंस वो जब्त करके ले गए ताला। वो फौरन पहुंच गया पार्लियामेंट के एक मेंबर के पास, साहब हमने तो आपको 50,000 रुपए चुनाव में दिए थे, हमारा तो वहां सील लग गया। वो भागता वहां पार्लियामेंट छोड़ के आया, उन्होंने कहा साहब क्या कर रहे आप, रोक दी उस फाइल, मैं बात करूं, और कहा कि साहब ये फाइल रोको, मेरे पास भेज दो। तो उसने देखा कि साहब हमारा तो कुछ नहीं चलता है, तो हम तो केवल यहाँ तो चपरासी है। तो उसने सारे जितने दुकानदार थे बोले फर्स्ट क्लास है आपका खाना, बहुत बढ़िया है, सारे सर्टिफिकेट देता चला गया, जांच ही नहीं करवाया। बोले क्यों चक्कर में पड़े हम इसके? तो इसलिए प्रजा पालन का पहला धर्म शासक और ऑफिसों पर निर्णय होने के कारण, जब तक ऑफिसर और सरकार के सारे पार्लियामेंट स्वच्छ और निर्मल नहीं होगा, अर्थात जो कानून बनाने वाले लोग वहां कानून नहीं पालन करेंगे, तब तक प्रजा कानून त्रिकाल में नहीं कर सके। यथा राजा तथा प्रजा। पर इसका अर्थ यह मत समझना कि मैं आपको इजाजत दे रहा हूं वो पालन नहीं करते इसलिए आप झूठ बोलो। हाँ, आप खुश मत होना इस बात से। तो मेरा यह कहना है सत्य को सीखे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेना चाहिए। जनक महाराजा के जीवन में आया हुआ है वर्णन करते हुए कि यह चोर नहीं था, एक वीर असील वाला आदमी नहीं था, सब सील वाले आदमी थे। ऐसे छांदोग्य उपनिषद में कि जनपद में और ढूंढते रहे कि भैया कोई ऐसी मिल जाए। तो इसलिए महानुभाव सत्य इतना आसान नहीं है, हम जितना उसकी चर्चा करते हैं वो मीठी बहुत है चर्चा में, परंतु कड़वी भी है उसको अंदर उतारते समय। इसीलिए इसको निर्लोभ वृत्ति की आवश्यकता भी बताई, काय के लिए निर्लोभ वृत्ति, इसीलिए उसको रखा कि लोभ वृत्ति। भगवान राम जब लौटने लगे लंका से, स्वर्ण में लंका, हीरे मोती माणिक पन्ना जड़ जवार खूब भंडार हुआ, जब कहा वाल्मीकि ने लिखा है विभीषण ने के भगवान राम से, प्रभु आप यहां का गद्दी स्वीकार कर लीजिए, तो वाल्मीकि ने लिखा जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि के देते, मेरी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग के समान है। तो साहब एक अंगूठी भी नहीं लाए वहां से राम, एक अंगूठी तो राज्य सब दे रहे थे, कम से कम एक हीरे की अंगूठी तो डाल के लाते वहां से, वो भी नहीं लाए। कैसे हो, क्या हो उनका दिल, क्या हो उस सच्चाई का, हम कोई मीटर है नापने के लिए? जितना बड़ा आकाश उतना बड़ा सच्चाई, और पिता की छोटे से आज्ञा के लिए, सत्य के लिए, पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए स्वयं बलिदान में झोंक गए अपने 14 साल वनवास, इतने से बात के लिए 14 साल पेड़ों के नीचे लेटो भूखे रहो। आपको मालूम है 3 दिन जलाहार पर रहे, अग्नि पुराण में लिखा है, पानी पी के, खाने को कुछ नहीं मिला, और 4th-5th दिन उनको फल मिले, और 6th दिन किसी भीलों ने चावल और मिट्टी के बर्तन और दाल वगैरह ला के दिया, और सीता ने पेड़ के नीचे पका के और भोजन कर। क्या बात, यहां घर में थोड़ी सी रसोई तैयार होने में देरी लग जाए आके फाड़ ले, यही शिकायत तुम्हारे माँ बाप ने, जल्दी नहीं तैयार हुआ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दुकान जाना है, जो है तो है नाना थे। और जिसने राम जलाहार पर रहे, फलाहार पर रहे, और कितना पेड़ के नीचे सोते रहे, क्या क्या नाना तरह के कष्ट उठाते रहे। तो इसलिए सत्य जो है वो आत्मानुभूति की चीज है, अनुभूति की चीज है। इसीलिए अमृतचंद्राचार्य ने कहा स्वानुभूत्या चकाश, काय की स्वानुभूति, सत्य की स्वानुभूति, आत्मा की स्वानुभूति। स्वानुभूति जो है वो इतना आसान नहीं है स्वानुभूति कि यम ही मिल जाए। तो इसलिए महानुभाव में आप लोगों की यही सत्य घोषित शिक्षा लेने के लिए मैं ये करूं कि आप अनुव्रत रूप से और सत्य को जब तक परिपालन नहीं करोगे तो तब तक गृहस्थी जीवन भी अपने पवित्र और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सब तो कहते हैं टोडरमल जी का गवाही देते रहते हैं, बोले कि ये टोडरमल जी ने कहा है, पर ये तो टोडरमल जी बन के दिखाओ, सत्य बोलता तो 5-6 आदमी फांसी सजा चढ़ जाते, पर हाथी ने पैर भी रखा तो उन्होंने कहा कि गजराज तुम क्यों मार खाते हो, मैं गई वर्षे बाढ़ खेत को खाए, भूप करे अन्याय तो न्याय कौन पर जाए, उससे कहा कि नहीं तेरा कोई दोष नहीं है, और तब हाथी ने पैर रखा। 24 घंटे झूठ बोले और फिर टोडरमल जी की गवाही देते बैठ जाए घर घर लेके, वो जो ये जनेवा को टंगा रहता ना, वो सत्य घोष चक्कू, बोले साहब चक्कू टंगा हुआ है तो गले में टांग लीजिए उस टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाश को, इससे सत्य नहीं प्राप्त होगा, सत्य उसमें नहीं है, सत्य यहां है, वो दर्पण है कि आपके यहां सत्य कहां है प्रकट दिखाने के लिए। तो मैं आपके सामने जो आचार्य ने बताई वो वाक्य पढ़ के फिर उसके ऊपर ये बोलूं, तय धम्म कारण दोष निवारण ये भव पर भव सुख यू சச்சிவு வைணவு புவன அருள் போலையு விசையாகரவு உத்தம் சத் தயா சே லபாலு பரா ஹுவா ஹை. தோஷோ கா நிவாரக ஹை ததா இஸ் பௌ மே ஔர் பர பௌ மே சுக காரக ஹை. யஹ சத்ய வாணி கி சிரேஷ்டா ஹை லோக மே அதுல தர்ம ததா இஸ்ஸி விஸ்வாஸ் கிரஹ விஸ்வசனீயதா கா நிவாஸ் கா ஸ்தான ஹை. சத்யவாசி சபகா விஸ்வாஸ் அர்ஜித் கர் லேதா ஹை. இஸ்கே விபரீத் அசத்ய வக்தா கிசி கா விஸ்வஸ்த் நஹி ஹோ சக்தா. சுபு ஏக் போலே, ஷாம் ஏக் போலே, மத்யான் ஏக் போலே, யஹ சப் தர்மோ மே பிரதான ஹை. ஜெய்ச ராஷ்ட்ர கா பிரதானமந்திரி முக்கிய ஹோதா ஹை சப் மே, வைசி சப் தர்மோ கா, தஸ் தர்மோ கா யே பிரதானமந்திரி ஹை. சத்ய பிருத்வி பர் கௌரவ கா விதான ஹை. சத்யநிஷ்ட கஹீ பி கூமே உஸ்கே லியே ஜோ ஹை பிருத்வி மண்டல் பர் கோயி பி பாதாயே சதாதி நஹி. சத்ய சம்சார சமுத்திர கா சேது ஹை, பூல் ஹை, சப்கோ பார் கரா தே. சத்ய சபகே மன மே சுக உத்பன்ன கர்னே வாலா ஹை. மனுஷ்ய ஜன்ம சத்ய கி காந்தி சோபாயமான ஹை. புண்ணிய கர்ம சத்யாசரே சே பவித்ரதா கி பிராப்தி ஹோதி. உன்னே கஹா கி சச்சேன பவித்ரோ புண்ணியகம். சத்ய ஆத்மி ஹி உஸ் பவித்ர புண்ணிய கோ பிராப்த கர் சக்தா ஹை. புண்ணிய க்யா சீஜ் ஹை? ஆச்சார்ய நே இஸ்கா பரமாத்ம பிரகாஷ் மே ஔர் பிரம்மதேவ் நே டீகா மே பஹுத் சஹீ தர் லிக்கா. உஸ்கோ ஹே ஹி நஹி பதாயா உன்ஹோனே. ஹே கைசே ஹோ சக்தா ஹை? ஜிஸ்கே ஊபர் பைட்டே வோ ஹே கைசே ஹோ சக்தா ஹை? ஹே நஹி ஹோ சக்தா ஹை. உன்னே கஹா புண்ணோ ஹோய் வோ விவேண் மோ மயி மோஹேண் மயி மயி மோஹேணே பாவம் தா புண்ணம் அம்மா மாஹு. இஸ்கே ஸ்பஷ்டீகரண பிரம்மதேவ் நே நஜ புண்ணா சம்யக்த்வாதி குண சஹிதம் பரத சகர பாண்டவாதி புண்ணிய பந்தவத். கியூங்கி புண்ணிய பந்த சம்ய திருஷ்டி கோ மத புத்தி பிரம் ஔர் பாப் கா காரண நஹி ஹோதா ஹை. இஸ்லிய புண்ணிய ஹே நஹி ஹை. புண்ணிய இஸ்கே லியே ஹே ஹை ஜோ வைபவ் மில்னே கே பாத் ஷராப் ஔர் வ்யசனோ மே டூப் ஜாதா ஹை. உடே சுடே நா உஸ் தத்துவ மே பிரவேஷ், நா உஸ்கா நிர்வச்சன், நா உஸ்கி நிருக்தி, நா உஸ்கா கோயி க்யா ஆச்சாரியோ நே உஸ்கி விட்பத்தி கி உஸ்கோ ஜானே பினா பலே புண்ணிய ஹே. ஜெய்சே தத்கால் ஜன்மா ஹுவா பாலக் ஹோதா ஹை ஔர் ஜோ ஆகே போல்னா சீக்தா ஹை தோ சாஹே ஜிஸ்கோ போல்தே சலே ஜாதா ஹை. உஸ் சப்தோ கா அர்த்த ஜான் நஹி. பேட்டா ஐசே நஹி போல்னா. பலே க்யூ? பலே யே காலி அர்த்த ஹோதா ஹை. பலே டீக் ஹை, அப் நஹி போலுங்கா. உஸ் பச்சோ கோ மா பாப் சிகாதே ஐசே சப்த நஹி போல்னா. தோ மஹானுபாவ ஜின்கோ வ்யாகரண கா ஜான் நஹி ஹை, ஜின் கோ யதார்த்த தத்துவ கா ஜான் நஹி ஹை, வோ புண்ணிய கோ சாஹியோ கஹதே சலே ஜா தோ உஸ் பாலக் மே ஔர் உஸ்மே க்யா ஃபர்க் ஹை. ஐசே யே அன்படோ கே பீச் மே குச் பி போல்தே சலே ஜா பர் ஜோ படே லிகே லோக் ஹை உன்கே சாம்னே போல்னா ஆசான் காம் நஹி. ஜப் ஏக் ஏக் சப்த ஔர் அக்ஷர் சே ஹமாரே பாரத் கே அர்த்த மந்திரி ஜோ ரஹே பஹுத் சால் தக் தேஷ்முக் உன்னோனே லிகா ஹை அப்னே ஜீவன் சரித்ர மே கி மே 15 கண்டே ஹர் சாஸ்திர பர் அத்யயன் கர்கே ஔர் 15 கண்டே அத்யயன் கர்கே ஔர் 15 மினிட் போல் சக்தா தா பர் ஆஜ்கல் 15 மினிட் அத்யயன் கர்கே ஔர் 15 கண்டே தக் அர்த்த சாஸ்திர பர் போல்தே. ஜப் பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி மே ஹமாரே ஜோ வினோபா பாவே கே அத்யக்ஷதா மே எக் சம்ஸ்கிருத் வித்வானோ கே சம்மேலன் ஹோ கயா ஔர் உஸ்மே மஹேந்திர குமார் நியாயாச்சார்ய பி போலே. மஹேந்திர குமார் கே ஏக் ஏக் பாதோ கோ பஹுத் படே பிரகாண்ட் பண்டித் நியாய கே ஔர் இஸ்கே தே தல்சுக்பாய் பால்வாடி அபி ஜப் மேரே பாஸ் தில்லி மே ஆயே தே வோ ஃபிரான்ஸ் பாரிஸ் ஜானே சே பஹலே உன்கா பாஷன் தா பரத் பாஹுபலி பர் 5 दिन ठहरे थे वहां हमारे पास, वहां की भरत बाहुबली की चर्चा करने के लिए वहां कथा पर बोलना है. तो उन्होंने एक बात मुझे जाते जाते कहा अपने आंखों में आंसू लाने जैसे, महेंद्र कुमार जी और 6 महीने जीते तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विद्वान हो जाता. बोले उसकी 6 महीने पहले होने से मैं बहुत दुखी हूं ये बात सुनने के लिए. नरसिंह मालवणी तो महानुभाव जब व्याकरण को छोड़ के भटक के कोई चीज कह दे वो रुचि और अच्छी तो लगती है परंतु नहीं, व्याकरण से बंधित जब घोड़ों को बांधते इधर इधर तो वो सड़क छोड़ के नहीं जाता है. वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, यूं बांधते हैं. तो इसी प्रकार से जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं है, बिना व्याकरण के ज्ञान के अनेक लोगों ने अर्थों का अनर्थ कर लिख बैठे शास्त्रों में और पुराणों में और अर्थ करते इसमें बड़े बड़े अनर्थ. तो इसलिए एक एक शब्द आचार्य ने जो रखा वह व्याकरण के साथ रखा, व्याकरण के साथ. और बिना व्याकरण का, बिना निरुक्ति के, बिना निर्वचन के, बिना कोश के, कोई एक एक शब्दों का अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छंद कुछ भी कहते चले जाओ तो वह अनर्गल बताया. उसको बाजी विषम आचार्य ने क्षत्र चूड़ामणि में अनर्गल शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्गला नहीं. तो इसलिए तो इसमें कहते हैं पुण्य को शुभ शुभ को ही नहीं माना। अमृतचंद्र ने कहा धर्म परिणत्या शब्द का, वो भी धर्म परिणति का साधन कारण है। कितने सुंदर शब्द प्रयोग किया उन्होंने, क्या कहा इसका अर्थ? उन्होंने कहा कि अशुभ को अधर्म कहा पर शुभ को अधर्म नहीं कहा अमृतचंद्र ने, समय सार की टीका में मेरे पास मौजूद है प्रवचन सार में। अधर्म नहीं है शुभ, यदि शुभ अधर्म हो जाए अशुभ के समान, तो आपको यह मानना पड़ेगा सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं है। और आपके किसी पूर्वजों ने लिखा हो अपने पुराणों में निकाल के लाइए मेरे पास कि सत्य असत्य में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे ऋषियों लोग उस सती सीता द्रौपदी अंजना चंदना का गीत क्यों लगाते? उनको काम धंधा नहीं था जपमाला जपना छोड़ के, ध्यान करना छोड़ के, और पुराणों में लिखते रहे कि ये सती हुई ये सती हुई, उनकी गीत गाने की जरूरत क्या थी? उन ऋषियों को भगवान महावीर ने अपने दिव्य दौरे में सती सीता का वर्णन किया। बड़ी आप जिनसेन आचरण के मंगलाचरण में शुरुआत में कहा, बोले हमें पहले पहले भगवान महावीर ने सुनाया सती सीता का जीवन चरित्र। तो असती और सती में कोई फर्क नहीं है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे आप लोगों की भाषा में, मैं तो अपने दक्षिण में ये कहावत नहीं है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकासर बाजी और टकासर खा गया, ऐसे कहते हैं। उसके पीछे भी कहानी भी सुनाते हैं क्या कि साहब कोई एक साधु बहुत सस्ता है करके वहां गए किसी एक प्रदेश में, तो गुरु ने कहा अरे क्या खतरा है, तंबाकू भी एक अणी किलो और जो है ये बहुत बड़े बड़े कीमती कीमती जो पेड़ा बर्फी भी एक रुपये किलो, बोले खतरा है यहाँ। बोले साहब कोई खतरा नहीं, आनंद है मंगल है। तो चले गए गुरु, बोले कि तू तो रह जा मैं नहीं रहता। साहब धीरे 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 कोई आ गई संकट उसको फांसी की सजा का, बोले ढूंढो साहब ये गले का फांसा नहीं बनता बराबर क्या करे। बोले धर्मशाला में सोया खा पी के उसको पकड़ो उसको ले गए। तो अंतिम एक इच्छा होती भी है तो मेरी कही इच्छा हो तो बताओ। बोले क्या इच्छा बताओ? तो उन्होंने कहा गुरु का दर्शन करवा दे। गुरु को बोला, गुरु ने कहा मेरे पास संकट आ गया महाराज, आपने कही थी टकासर राजा टकासर खा जा अंधेरी नगरी सब ये घोड़े 12 टका कोई भेदभाव नहीं है, पाप भी बढ़ा पुण्य भी समान। तो उन्होंने कहा ठीक है देखो अब तो छुटकारा के लिए की है कि मैं भी लड़ू तू भी लड़े, और पूछे तो ये बताना जो ये फांसी के सजा जाएगा वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा राजा होगा। तो उन्होंने दोनों लड़ने लगे बहुत जोर जोर से लड़ते रहे। तो उन्होंने कहा साहब क्या की लड़ाई? बोले साहब मैं जाना चाह रहा हूं। गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा नहीं साहब मैं जाऊंगा। तो राजा ने कहा मामला क्या है? साहब यहाँ का यही राजा बनेगा जो मरने के बाद जो जन्म लेके आने। उन्होंने कहा साहब मुझे ही दे दो कहा उसने। तो अंधेरी नगरी जो है उसमें व्याकरण धर्म साहित्य आचार द्वादशांग वाणी उसमें तराजू है, एक तिल तुष्मात इधर का इधर का आचार्य मंजूर नहीं करते हैं। कुंती शब्द में आप बिंदी हटा दीजिए तो कुत्ती बन जाएगा, ये व्याकरण शास्त्र है मालूम है आपको। छंद बहुत जानते थे, अक्षर मात्रा पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम, ये सब बातें हैं अर्थ का अनर्थ एक छोटे से आंकड़ा इधर से इधर बदलते ही। और ये भारतीय धर्म और संस्कृति है, अंग्रेजी भाषा नहीं है समझे ना। अंग्रेजी में नॉलेज लिखना हो तो बोले कि वो है कैसे लिखा जाता है, कर्नल में आर नहीं है, ऐसे अनेक शब्द जो प्रयुक्त अक्षर कुछ अर्थ कुछ अंग्रेजी भाषाओं के मेरे पास लिस्ट है कि भाषा कुछ लिखना कुछ स्पेलिंग कुछ और अर्थ कुछ, हमारे यहां ऐसे नहीं, जो बोलोगे वही लिखना होगा और वही अर्थ करना होगा। ये बंधन है भारतीय धर्म और संस्कृति के इस व्याकरण शास्त्र के अंदर। हमारे यहां जो शब्द है उसके पीछे इतिहास है पवित्रता है। आप लोग कहते हैं ना ये धर्म पत्नी है, इसके पीछे मिठास है धर्म है तत्व अग्नि साक्षी पूर्वक कर लिया। और वो लोग कहते हैं वाइफ, वाइफ बोले तो यूं बगल में पकड़ लिया और चाहिए इसमें जाने का, तुम्हें कोई वाइफ कह रहे तो मेरे पति को डांटो तुम। बोले कि साहब आप मत कहना मुझे वाइफ, मैं वाइफ नहीं हूं मैं धर्म पत्नी हूं। हमारे भारतीय धर्म तत्व ज्ञान के पीछे इतिहास है पवित्रता है, उन्हीं शब्दों को हमें प्रवेश करना होगा समझे ना। इसलिए आप लोग कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें, हमारे भारतीय तत्व ज्ञान के अंदर मिठास है उनमें इतिहास है उनके पीछे पवित्रता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने और पाणिनि ने साफ कह दिया कि प्राकृति संस्कृति चापी स्वयं प्रोक्ता स्वयं भगवान ने प्रजापति ने प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में 64 अक्षरों के द्वारा 63 अक्षरों के द्वारा इसको व्यक्त कर लिया और ब्राह्मी सुंदरी को आजनाथ भगवान ने प्रथम पढ़ाया। तो इसलिए हमारे इस शब्दों के पीछे बहुत पवित्रता होने के कारण शब्दों का अर्थ करते समय बे सरलता से करना चाहिए। इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं क्योंकि पुण्य सम्यक दृष्टि को मद बुद्धि में भ्रम और पाप का कारण नहीं हो सकता है, जैसे भरत सगर राम और पांडव आदि। ये बात ब्रह्मदेव ने अपने परमात्म प्रकाश के टीका में दिया है। आचार्य टीका में एक एक शब्दों का अविवेक के लिए पुण्य खतरा पैदा करता है और विवेकी के लिए पुण्य तो वह उत्तम से उत्तम मार्ग को प्रशस्त करता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एक एक अनर्थाय किमित्र चतुष्टय, एक एक अनर्थ के कारण हो जाते ये पीछे क्या रहने से अविवेक रहने से। इसलिए जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होगा वो अपने बोलते समय बुद्धि से परामर्श करके और फिर उन शब्दों का उच्चारण करेगा। यमी कोई हमारे अपने धर्म और तत्वज्ञानी दिव्य ध्वनि से निकली हुई ये वाणी है उसके पीछे बंधन है। तो इसलिए मानुभाव मुझे आज यही बात कहनी है कि हमें अपने मनुष्य के जीवन के अंदर जो अपना मन है उसको स्वच्छ रखने के लिए शक्ति सर्वोपरि और श्रेष्ठ है और शक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार का कारण है। एक बार की बात है महात्मा गौतम बुद्ध के दो शिष्य थे, एक बूढ़ा था एक जवान था और दोनों कहीं से आ रहे थे नदी किनारे। आते आते रास्ते में गड़बड़ हो गया, एक नौजवान लड़की कोई कपड़े धो रही थी तो पैर फिसल के नदी में और डूबने लगी तो नौजवान साधु कूद के और उसको खंभे पर उठा के ले आके ऊपर छोड़ दिया और चल पड़े दोनों। बूढ़ा साधु लाल मगुल हो गए, भ्रष्ट हो गया तू तो, उसको छुआ क्यों तुमने, बहुत डांटते डांटते महात्मा गौतम बुद्ध की तरफ जा रहे थे। जाते जाते वो तेरे कपड़े उतरवा लो घर भेज दो, बहुत डांटते वहां पहुंचा क्या तू, ये रो रहा था साहब अब तो मेरा क्या होगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध बल्कि इसका प्रायश्चित देखिए इसको घर भेज दीजिए। और इसमें बोले हुआ क्या, बोले साहब इसने उस जवान लड़की को डूबते हुए नदी में से कंधे पर लाके ऊपर रखा। तो बोले क्या, बोले साहब मुझे 10 मील से डांटते आ रही है तो मैंने किया तो सही है, तो रोने लगा बेचारा 10 मील से, बोले 10 मील से डांटते आ रहे हैं, बोले उसने तो खंभे पर से नीचे उतार दिया पर तुम दिल में वहां 10 मील से लेके बैठे, तू प्रायश्चित का भागी है, तू प्रायश्चित का भागी है, तू प्रायश्चित का भागी नहीं है, प्रायश्चित का भागी बूढ़ा तू है। तो इसलिए मान भाव हमारे यहां बाल सफेद हो गए इसलिए बड़ा नहीं है कि बोले कि परिपक्व ज्ञान है भैया, तत्व ज्ञान देखे तो बड़ा सर्वे भी सिद्धता तत्व ज्ञान भी नाम दुख नहीं भी शाश्वत आचार्य ने सुप्रीम जजमेंट दिया है। तत्व ज्ञान बहुत बड़ा आता है, इसका कोई कौड़ी मूल्य नहीं है, वो ज्ञान परिपक्व है क्या, व्याकरण से साहित्य से निरुक्ति से निर्वचन से बार बार धौरा ग्रंथ में वीरसेन आचार्य ने लिखा साहब इसका निर्वचन यही होगा, नहीं बदल सकते, शंका कर बड़ा सताती चला जा रहा है साहब ऐसे क्यों नहीं है, बोले नहीं ऐसे होगा यूं ही होगा। धौला ग्रंथ में जय धौला में और ग्रंथों में और पूज्यपाद में इसी प्रकार से सर्वार सिद्धि में बोले यूं ही होगा ये नहीं होगा। तो इसलिए मुझे खास तौर से यही कहना है सत्य पढ़ने में बहुत आसान है पर जीवन में उतारने में बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे देश के दो पहिए हैं प्रजा और राजा, साधु और शासक, ये पहिए जब तक दोनों सत्य मार्ग पर चलते रहेंगे तो भारत हमेशा अपने जीवन को ऊंचा उठाते रहेगा। इसीलिए तीर्थंकर छद्मस्तवस्था में बोलते नहीं है, हमें भी जो बोलना है वो तीर्थंकर की उसी वाणी के लिए बोलना है। दृष्टांत हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कुंकुंदाचार्य ने 80 दृष्टांत संसार में जय नाम कोई पूरी सो रायणम जाने गुण शब्द आदि, सोने का दृष्टांत, राजा का दृष्टांत, अनेक तरह से लोहे का दृष्टांत, नाना तरह से ले लिया। इस प्रकार दृष्टांत को आप पेड़ पौधे कहीं ले सकते हैं पर भगवान की वाणी खत्म। इसीलिए कि सत्य में दोष आ जाएगा सर्वज्ञ बनने के बाद ही वो वाणी में करते हैं, हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि ले जानी चाहिए। इसलिए मैं यही कहूं हमारे यहां कई ऐसे ये नहीं किया, जहर जहर है अमृत अमृत, अमृत और जहर दोनों समान हो जाए तो पुण्य जो है वो अमृत के समान और जो पाप है वो जहर के समान मारक है। इसलिए पाप को छोड़ना आवश्यक है और पुण्य से वो वैभव प्राप्त होके यदि मति मोहित होके यदि उससे कोई ये हो जाता तो उसके लिए खतरा बता है। धन कोई रख रहा है उसको मना नहीं किया गृहस्थ को पर बाप कहता बेटा देखो ये पैसे तो तेरे पास है व्यसनों में बत पड़ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज सत्य के साक्षात्कार के लिए ये उत्तम सत्य ये तो तीर्थंकर सम्यक दृष्टि जीवी परिपालन कर सकते हैं। इसलिए हमें सम्यक दर्शन के साथ इस सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये संक्षिप्त में भाषण समाप्त। नमो नमो अरहंतानम, नमो नमो सिद्धानम, नमो नमो अय्यान, नमो नमो उवझायान, नमो नमो यसवे
जय हो तेरी, जय हो के शांति दाता शांति जिनेश्वर, जय हो तेरी, जय हो तेरी,
जय हो तेरी, जय हो तेरी,
शांति जिनेश्वर,
शांति जिनेश्वर,
जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर, जय हो तेरी, जय हो तेरी,
जय हो तेरी, जय हो तेरी,
शांति जिनेश्वर,
शांति जिनेश्वर।
तेरी ज्योति से जहां ज्ञान का दीपक जला,
ज्ञान का दीपक जला, शांति शांति दाता।
बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे,
स्वामी तेरे द्वार पे,
तेरी कभी के शांति दाता शांति जिनेश्वर, जय हो तेरी जय हो तेरी
जय हो तेरी जय हो तेरी
शांति जिनेश्वर,
शांति जिनेश्वर जय हो तेरी जल झरना
मेरे समकित सावन आयो, अब 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 मेरे समकित सावन आयो, सावन आयो, सावन आयो।
गमनी शशि वदनी तरुणी